आप सबको स्वागत है। ये श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध से श्री ध्रुव महाराज इनकी जो कथा आती है उसके ये चार दिन की जो श्रृंखला है उसमें आज दूसरा दिन है। कल हमने चर्चा किया किस प्रकार जब उत्तानपाद की दूसरी पत्नी सुरुचि ने ध्रुव महाराज का बड़े अहंकार से और ईर्ष्या में आकर कुछ ऐसे कटु शब्द कहे ध्रुव महाराज को जो अपने पिता के गोद पे बैठने जा रहे थे, वो बहुत ही दुखी हुए, क्रोधित हुए और रोते हुए मां के पास गए। किस तरह ध्रुव महाराज की मां ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से तत्व ज्ञान किया है, किस तरह से ऐसी परिस्थिति को स्वीकार करना है ये समझाया। और उनकी जो इच्छा थी उसको कैसे प्राप्त किया जाए वो तरीका भी दिखाया। तो ये दो चीज बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं और किस तरह से हर एक परिस्थिति को किस तरह से स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तत्तेनुकंपम सुषभिक्षमाणो, ब्रह्मा जी का सुंदर प्रार्थना है भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला के बाद। और वहां बताते हैं कौन व्यक्ति भगवत धाम जाने योग्य है, मुक्ति प्रदेश दायभा किसका हक है, जो हर क्षण जीवन भर इस भावना को बनाए रखे कि हर स्थिति में भगवान की कृपा किस तरह से देखे और आध्यात्मिक जीवन, जो जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक साक्षात्कार, उसमें अग्रसर होते रहे। और कल मैंने यह भी बताया कि किस तरह लोग परिस्थिति को बदल देने से, भौतिक परिस्थिति को बदल देने से उन्हें लगता है कि शायद मेरी समस्या का हल हो जाएगा। कल किसी ने मुझसे पूछा कि प्रभु जी आप बोल रहे थे कि अगर जॉब बदल दिया तो नहीं होता है, तो नहीं बदलना चाहिए क्या? मैंने कहा आप जो कुछ भी बदलो, चाहे पृथ्वी से चंद्रमा चले जाओ, ग्रह बदल दो, पर अगर व्यक्ति समझता है कि इसके द्वारा मेरी सारी भौतिक समस्याओं का हल हो जाएगा, यह मूर्खता है। क्योंकि भौतिक समस्याओं का एक ही मात्र हल है श्री हरि का पूर्ण रूप शरण, एकमात्र तरीका वही है, उसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है। भवमहा दावाग्नि निर्वापण, पूर्ण रूप से अगर निर्वापण करना है तो भगवान की शरण जाना है। माम एकम शरणम व्रज, उसके अलावा भौतिक संसार को, भौतिक संसार में अपनी परिस्थिति बदलकर अगर भौतिक समस्याओं का हल चाहते हैं तो नहीं होने वाला। उसका हद था हिरण्यकशिपु, जो कहा कि मैं भौतिक संसार को ही बदल दूंगा, उसके नियमों को बदल दूंगा, भगवान को भी बदल दूंगा, मैं ही भगवान बन जाऊंगा, वो अति होगा। पर हम शायद उस स्तर पर नहीं जाएंगे, पर हम अपने स्तर पर हम समझते हैं कि ये बदल दूंगा वो बदल दूंगा, सही परिस्थिति हो जाएगी। पर असली आश्रय ये है और वो बहुत सुंदर मार्गदर्शन ध्रुव महाराज की मां सुनीति ने दी। और इसीलिए हम देखते हैं सुनीति किस तरह से अवहेलना की गई महाराज उत्तानपाद द्वारा किसी कारणवश, फिर भी वो मानसिक रूप से विचलित नहीं हुई और उसी जीवन के अंत में हम देखते हैं वो भगवत धाम चली गई। हमेशा वो स्थिति बनाए रखी, मानसिक स्थिति अपना, और भगवान श्री हरि का आश्रय ले रही थी। तो बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। तो जब सुनीति ने ये मार्गदर्शन ध्रुव महाराज को दिया तो ध्रुव महाराज अपनी मां की आज्ञा लेकर तुरंत महाराज उत्तानपाद के महल से और उस शहर से निकल पड़े, जंगल की ओर गए जहां वो उन्होंने सुना था कि ऋषिगण जाते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या के द्वारा। तो भागवत में कहा जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हैं वो सबके हृदय में हैं, और जब भगवान अपने अंतःकरण में निवास करने वाले वो जब देखते हैं, वो जब समझते हैं कि एक बद्ध जीव बड़ी गंभीरता से मेरे बारे में जानना चाहता है, मेरे साथ संबंध रखना चाहता है, मुझे खोज रहा है, तत्व ज्ञान की खोज में है, तब उनकी अहेतु की कृपा से एक सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं और जो हमें भगवान के बारे में सिखाते। चैतन्य चरितार्थ यही बताया गया, ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भगवान जो हमारे अंतःकरण में है वो जब देखते हैं, थोड़ी वो प्रामाणिकता देखते हैं हमारे अंदर, बड़ी गंभीरता से ये तत्व जानना चाहता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कि कहां जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है। शायद किसी के अंदर ये इच्छा होगी, पर तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा का मतलब क्या, अगर कोई उसे मार्ग बताया तो वो मूल्य देने के लिए तैयार है, उस मार्ग पे चलने के लिए जो मूल्य है वो देने के लिए तैयार है, उसको कहते हैं गंभीर व्यक्ति, सीरियस डिवोटी। हम कई लोगों को कहते हैं, मतलब उनको मिला वो ज्ञान, पर उनकी इच्छा भी नहीं है ना उनको उस पथ पर चलने की कोई इच्छा भी नहीं है। पर यहां हम देखते हैं तीव्र इच्छा होने के कारण भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए नारद मुनि वहां आए। नारद, एक भक्त बता रहे थे, नारायण को देने वाले नारद, जिसको भी नारद मुनि मिले उसको अंततः नारायण मिले। तो नारद मुनि वहां आते हैं और नारद मुनि पूछते हैं, बेटे कहां जा रहे हो? तो ध्रुव महाराज बताते हैं कैसे ऐसे हुई और इस तरह से मैं जंगल में जा रहा हूं भगवान की खोज में। नारद मुनि परीक्षा करना चाहते हैं, इच्छा तो बहुत बड़ी है, क्या उसके योग्य ये तपस्या, हमें उसके योग्य है ये, इसके अंदर वो योग्यता है? हम बड़ी बड़ी इच्छा कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं, पर वो भक्त बनने के लिए जो योग्यता प्राप्त करना है, वो सब प्राप्त करने के लिए जो जरूरी है, क्या वो हमारे अंदर वो दृढ़ता है वो प्राप्त करने की? नहीं तो फिर ये सब बता के क्या फायदा। जैसा कोई एक भिखारी जैसा व्यक्ति हीरे के दुकान में जाएगा और बोलेगा ये कितना ये कितना, बोले पैसा कितना है तेरे पास, आया हीरा खरीदने, जेब में है 5 रुपया, तो बोले ये नहीं, बगल में जाओ कांच के टुकड़े बेचते हैं वहां अमेरिकन डायमंड, वो खरीद ले। तो नारद मुनि देखना चाहते थे कि इसकी इच्छा तो बड़ी तीव्र है, पर क्या इसके अंदर वो योग्यता है कि वो प्राप्त करे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि वत्स, तुम्हारा उम्र तो बहुत कम है अभी, और छोटे बच्चों को इस तरह से कोई अगर डांट दे और कुछ कटु शब्द कह दे तो बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं किसी बच्चे को हम डांट देते, कोई सुनने वाला सोचेगा बाप रे ऐसा शब्द उपयोग किया, पर बात दो मिनट में वो हंसने लगते, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, और फिर खेलते रहते, फिर से वापस आते फिर भी वही काम करते। तो छोटे बच्चों को समझता नहीं है कोई डांटा या कोई प्रेम, ठीक है वो दोनों भूल जाते, कोई प्रेम से कहा या कोई डांटा भूल जाते। तो बोले इस तरह से बच्चे किसी ने बोल दिया है, ठीक है छोड़ दो। पर अगर आप कहोगे कि नहीं 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 मेरे अंदर को क्षत्रिय स्पिरिट है और मैं बड़ा हो गया हूं और मुझे भेदभाव समझ में आता है कि अपमान किया मेरा गया, अगर उतने विकसित हो चुका है तुम्हारा मस्तिष्क और तुम समझ रहे हो कि ये अपमान है, तो कम से कम इतना भी तुम समझ लो कि विधाता की कृपा से कभी हमें सुख और कभी दुख मिलता ही है, उसे सहन करो। कभी कोई अपमान करता है, कोई कहीं सम्मान देता है, वो भी संसार का नियम है, एक सिक्के के दो पहलू के समान, शीत है उष्ण है, सुख है दुख है, मान अपमान सब होता ही रहता है, सहन करो। अगर इतने बुद्धिमान हो गए हो, समझदार हो गए हो, ठीक है समझ लो और छोड़ दो, गंभीरता से मत लो उसे। और जिस स्थिति में भी भगवान रखे हैं तृप्त रहो। एक्चुअली नारद मुनि जो कह रहे हैं सही बात है, लेकिन क्यों छोटा सा कोई कुछ कर दी उतने लिए उतना जंगल जाना क्या करने, छोड़ दो भूल जाओ उसे, उतना गंभीरता से मत लो। और फिर कहे कि बेटे तू जिस चीज के लिए प्राप्त करने की इच्छा रख रहा, भगवान को प्रसन्न करना और भगवान की कृपा प्राप्त करने की इच्छा रख रहा है कि भगवान आके तुझे कृपा दे, तो मैं बता दूं कि ये जो भगवान को प्रसन्न करने का तूने इच्छा रखा है ये बहुत ही मुश्किल है एक मामूली जीव के लिए। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य बहुत अच्छे से समझाते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है और बहुत ही तकलीफ है। पंथास्त कोटि शतवत् सरसंप्रगम्यो वायोर्थापि मनसो मुनि पंगवानाम सोप्यस्ति यत् प्रपदसी न्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविंदमादि पुरुषं तमहं भक्त्या। ब्रह्मा जी कहते हैं पंथास्त कोटि, बड़े बड़े मुनिगण करोड़ों साल से तपस्या कर रहे हैं फिर भी भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्म लग जाएंगे और फिर भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, शायद कई योगी हजारों जन्मों तक योगाभ्यास करके भी नहीं प्राप्त करेंगे। पर भगवान को प्रसन्न करना भी बड़ा आसान है, इट ओनली रिक्वायर्स सिंसियरिटी। अगर प्रामाणिकता है, पत्रम पुष्पम थोल फलम तोयम यो मे भक्त्यात् प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तम अश्नामि, स्वीकार करता हूं। प्रसन्न करना आसान है प्रामाणिक भक्तों के लिए, सिंसियर। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल बट वी आर नॉट वेरी सिंपल। कृष्ण भावना जो है बहुत सरल है पर हमारी बुद्धि जो है सरल नहीं है, उस वो सरल में भी हम और शॉर्टकट निकालने के लिए घूमते हैं और कहीं घूम जाते हैं। जंगल में एक शॉर्टकट है उससे भी ज्यादा शॉर्टकट, पहले से भगवान उससे भी ज्यादा होशियार, भगवान ने दिया है उससे भी ज्यादा होशियारी कि मैं और एक शॉर्टकट ढूंढूंगा उससे भी छोटा, और उसमें कहीं घूम जाते, जंगल के अंदर घुस गए खो गए, ऐसी हमारी स्थिति। तो जो इनसिंसियर और जिसके अंदर दृढ़ता नहीं है, दो चीज बताते हैं प्रभुपाद, प्रामाणिकता जिसमें नहीं है और जिसके अंदर दृढ़ता नहीं है, तो फिर प्रहलाद नारद मुनि कहते हैं ध्रुव महाराज को, बहुत जन्मों से कई लोगों ने अभ्यास किया है तपस्या में और वैराग्य में, और वो भी जो भगवत साक्षात्कार है उसकी सीमा तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसीलिए बेटे मेरा मत सुनो, अभी तुम घर चले जाओ और जैसे तुम थोड़े बड़े हो जाओगे उस समय फिर से आ जाना। बड़े होने के बाद भक्ति करना, कभी कभी लोग कहते हैं ना अभी नहीं, अभी मैं सब करूंगा, बड़ा होने के बाद भक्ति करूंगा तुरंत। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि नारद मुनि कह रहे हैं, आप बोलेंगे भागवत में लिखा है, देखो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को बोला अभी मत करो बड़े होने के बाद करो, इसको कहते टेढ़ी बुद्धि। नारद मुनि ने बोला देखो इच्छा रहे तो भगवान साधन जोड़ देते, ऐसा एक कोटेशन निकाल देते, बोले देखो टेढ़ी बुद्धि के लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाता है, इसीलिए तात्पर्य पढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, दिस कंक्लूजन इज नॉट फॉर डिवोटीज हु आर सीरियस। ये सिद्धांत जो है, ये निष्कर्ष जो है, जो लोग गंभीरता से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए किसी स्तर पे, जीवन के किसी स्तर पर उनको भक्ति मिले वहां से उनको गंभीरता से लेना चाहिए। तो इस तरह से नारद मुनि कहते हैं कि तुम तृप्त रहो, जहां भी जिस स्थिति में भी हो तृप्त रहो, भगवान की कृपा समझकर तृप्त रहो, विचलित मत हो। और ये सही बात है, हमको ये समझना चाहिए। पर और एक निष्कर्ष अंत में एक बहुत अच्छा उपदेश देते हैं जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में भी कोई कटु शब्द कह देता है, कोई अपमान कर देता है, तो हमारी मन इतनी विचलित हो जाती है कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं, इधर उधर बहुत तरह से उसको, उस परिस्थिति को कैसा हम बदला ले या कुछ और बोले, इस तरह से हम फंस जाते। इस परिस्थिति से कैसा बच के रहना है, एक सुंदर श्लोक में हम सबके लिए, भक्तों के लिए खास करके एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं नारद मुनि। कहते हैं, गुणाधिकान मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समानात अनविच्छेद न तापैर अभिभूयते। अगर तीन गुणों से, तीन ताप जो है तापत्रय, और तीन गुणों से जो उत्पन्न होने वाले ताप या समस्याएं, उससे मुक्त होना है तो बोले ये तीन चीज करो। क्या करो? गुणाधिकार मुदम लिप्सेत, तुमसे भी ज्यादा गुण वाले व्यक्ति के संपर्क में आए तुम, जिसके अंदर तुमसे भी ज्यादा गुण है, तो वो देखकर मुदम आनंद हो। हमें आनंद होना चाहिए, ओ हमसे भी ज्यादा इसके अंदर योग्यता है, हमसे भी ज्यादा गुण है, कितना सुंदर, अच्छी बात है, आनंद होना चाहिए हमें। और अनुक्रोशम गुणाधमात, और हमसे भी निम्न श्रेणी पर कोई है तो अनुक्रोशम, अनुक्रोशम मतलब उसके ऊपर दया होनी चाहिए, उसको देना चाहिए और उसको अपने स्तर पर लाने की प्रयास करनी चाहिए। और मैत्रीम समानात अनविच्छेद, और अगर समान व्यक्ति, उसके अंदर भी वही गुण है, वही लक्षण है, तो उसके साथ मैत्री करनी चाहिए। तब ऐसे व्यक्ति को कभी जीवन में मानसिक रूप से कभी वो विचलित नहीं होगा। पर प्रभुपाद जी समझाते हैं, हम क्या करते हैं, जब हमसे भी कोई ज्यादा गुणवान व्यक्ति मिलता है तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, और जो हमसे भी निम्न श्रेणी का व्यक्ति मिलता है उसको हम एक्सप्लॉइट, शोषण करना, मतलब उसका फायदा उठाते हम लोग, और जो हमारे समान व्यक्ति को मिलता है उसको अपना गुणगान सुनाते, तुझे मालूम है मैं क्या, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हमारी समस्या है, और इसीलिए सारे मानसिक रूप से हमारी समस्या होती है, और वो रिश्ते नाते बहुत स्ट्रेंड हो जाते हैं, तनाव आ जाते हैं हमारे संबंधों में, स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा स्वरूप नहीं है। एक भक्त, खास करके एक वैष्णव का लक्षण ऐसा है। तो ध्रुव महाराज को कहते हैं कि ठीक है, अगर उसे अच्छा गुण है तो खुश रहो, छोड़ दो उसे, और ये एक्चुअली सही चीज है। पर ध्रुव महाराज का हृदय इतना बुरी तरह से चोट लगा है उन्हें कि वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। समझते हैं कि नारद मुनि जो कह रहे हैं मेरे लिए अच्छी बात है, पर क्या बोलते हैं मराठी, कड़त है पर वड़त नहीं, कुछ सब समझता है पर जमता नहीं मुझे। तो वो कहते हैं, किस तरह से उत्तर देते हैं, बोलते हैं ऋषिवर आप जो बातें कह रहे हैं मुझे मालूम है वो सबसे अच्छा मार्गदर्शन है, उसमें कोई गलती नहीं है, पर मेरे हृदय में वो बैठता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अज्ञान से भरा हुआ हूं अभी। माफ कीजिएगा कि मैं आपको उल्टा कुछ कह रहा हूं, आपके सामने कुछ कहना नहीं चाहिए, आपसे तो सिर्फ सुनना चाहिए, पर ये सब कह आप इतने कृपापूर्वक मुझे मार्गदर्शन दे रहे हो, पर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। जिस प्रकार पत्थर से अगर एक मिट्टी के घड़े को किसी ने अगर फोड़ दिया हो तो उस मिट्टी के घड़े में पानी बैठता ही नहीं है, उस तरह से सुरुचि के शब्द जो हैं मेरे हृदय के इस घड़े को फोड़ दिया है और आपके सुंदर जो मार्गदर्शन शब्द हैं ये मेरे हृदय में बैठ नहीं रहे, सब फिसल के चले जा रहे। क्यों? क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे एक पद चाहिए और उस पद को कैसे प्राप्त करो उसलिए मैं आया हूं। और मेरी मां ने मुझे बताया है कि वो पद को प्राप्त करना है तो बेटे हरि को प्रसन्न करो। तो इसीलिए हे ऋषिवर मेरी नम्र विनती है कि मेरी इच्छा क्या है आप सुनिए। पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीशो साधु अर्थमे, पदम मुझे एक ऐसी पद की प्राप्ति चाहिए। कैसी? त्रिभुवन उत्कृष्टम, आज तक तीनों लोकों में मेरे पिता न मेरे प्रपितामह या पितामह के पितामह किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ हो, तीनों लोकों में ऐसा पद जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता हो ऐसा पद मुझे प्राप्ति करनी है। कृपया अब मुझे मार्गदर्शन दीजिए, एक ऑनेस्ट पाथ, एक सीधा तरीका जिससे मैं इस पद को मैं प्राप्त करूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप नारद जी आप ये इच्छा को मेरी पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि आप तो एक सूरज के समान है जो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं केवल लोगों की भलाई करने के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कृपा से मुझे वो प्राप्त हो सकता है, आप वो मार्गदर्शन दे सकते हैं मुझे, आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो योग्यता है। कृपया आप मुझे इस मार्ग पर इस पद को प्राप्त करने की विधि बताइए। नारद जी ये देखकर बहुत प्रसन्न हो गए, बोले इसने योग्यता दिखाई है, इसके अंदर वो दृढ़ता है, ठीक है। तब नारद जी बोलते हैं कहते हैं कि पुत्र जो तुम्हारी माता सुनीति ने तुम्हें मार्गदर्शन दिया है कि भगवान की भक्ति करके श्री हरि को प्रसन्न करना, वह सर्वथा अनुकूल है, वह सही मार्ग है, उसी के पथ पर आप चलो, पूर्ण रूप से उस पथ में मग्न हो जाओ, यानी भक्ति में मग्न हो जाओ, इससे तुम्हारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष जितनी सारी वांछाएं हैं सब कुछ पूर्ण हो जाएंगे। भागवत में जैसे मैंने कहा कल अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सर्व काम हुआ जो कोई भी इच्छा हो, धर्मार्थ काम मोक्ष जितना भी कोई भी इच्छा हो, उस इच्छा को पूर्ण करने का सबसे अच्छा तरीका है तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, जड़ में पानी डाल दो बस। तो अब यहां से तुम सीधे यमुना जी के तट पर चले जाओ ब्रजभूमि में, और वहां मधुवन नाम का सुंदर वन है, वहां जो भी सिर्फ वहां प्रवेश करने से, मधुवन में प्रवेश करने से व्यक्ति भगवान के निकट पहुंच जाता है। वहां उस जगह की महिमा यह है। शायद आप लोग में से कई लोग इस ब्रजमंडल यात्रा में हम लोग गए थे मधुवन में, उस टीले पर गए थे जिसको कहते हैं ध्रुव टीला। मधुवन में आज भी वो टीला है, ध्रुव टीला, जहां उन्होंने, वो स्थान है जहां उन्होंने तपस्या की थी। और फिर वो उनको तरीका बताते हैं, तीन बार स्नान करो इस शुद्ध पवित्र और स्वच्छ गंगा यमुना जी के पानी में, जल में, और अष्टांग योग, अष्टांग योग की पद्धति सिखाते, यम नियम प्राणायाम इत्यादि, किस तरह से सांस रोकना, किस तरह से छोड़ना। क्योंकि आप जान सकते हैं कि ये जो तरीका दिया जा रहा है सतयुग में दिया जा रहा है, कृते यत ध्यायते विष्णु, सतयुग में वो तरीका था आत्म साक्षात्कार का, ध्यायते विष्णु, तो ध्यान की पद्धति, ध्यान की जो पद्धति थी उस समय, तो वो संपूर्ण रूप से वो तरीका बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया, अंततः प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि योग का मतलब है मन को नियंत्रण करना, नियंत्रण करके जहां चाहिए वहां केंद्रित करना, ये योग का उद्देश्य है। तो इस तरह से करो, और फिर आठ श्लोकों में भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं, आठ श्लोकों में, ताकि ध्रुव महाराज जिन्होंने देखा नहीं भगवान, पांच साल के लड़के छोटे, उनको बता रहे हैं उनका मुखारविंद कैसा है, उनके बाहु कैसे हैं, उनके वक्षस्थल कैसे हैं, संपूर्ण उनके कपड़े जिस तरह से, वस्त्र कैसे हैं। अरे कृष्ण, नहीं बता सकता है बच्चों को, उस तरफ जाके थी, वस्त्र कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका अंग की कांति कैसी है, मुकुट कैसा है, आभूषण कैसे हैं, एक एक भी बहुत ही डिटेल में वर्णन करते ताकि ध्यान करने में मदद हो। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, कुछ लोग आजकल योगाभ्यास के चक्कर में भगवान का रूप ही नहीं तो क्या और क्या ध्यान करोगे, न नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला, किस पे ध्यान करोगे, हवा पे? ध्यान करते करते सो जाते हैं वो लोग, नींद आएगा ही, और वैसे भी ध्यान किए तो थोड़ा मन शांत होता है फिर से विचलित हो जाता है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्तियम योगिन, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्तियम योगिन, अंततः भगवान का जो स्वरूप है उसके ऊपर ध्यान करना, ये ध्यान का उद्देश्य है। ऑफकोर्स कलयुग में उस ध्यान की परिपूर्णता है, नाम अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए केवल नाम पे अगर ध्यान किए आप तो सतयुग में स्कृते यद ध्यायते विष्णु कलौ तद हरि कीर्तना, जो फल ध्रुव महाराज को तीव्र ध्यान से मिला वो यहां इस तरह से भी प्राप्त हो सकता है। फिर ध्यान का परिणाम क्या होगा, कहते हैं भौतिक कल्मशों से तुम मुक्त हो जाओगे ध्रुव, और भगवत ध्यान से लौट कर नीचे नहीं आओगे, समाधि के स्तर पर जाओगे जहां से तुम नीचे स्तर पर आने की संभावना भी नहीं है, ये तरीका है। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज, द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोले ये सात दिन तुम अगर ध्यान से करोगे तो आकाश में उड़ने वाले जो सिद्ध पुरुष है उनका भी दर्शन हो जाएगा तुमको, मतलब टेस्ट है कि तुम ध्यान से जब कर रहे हो कि नहीं, लिटमस टेस्ट, सात दिन के अंदर आंख खोलोगे तो हवा में जितने सारे सिद्ध उड़ रहे हैं सबको देख सकोगे तुम, इसका मतलब समझ लेना सही तरीके से ध्यान कर रहे हो। तो इस तरह से द्वादश अक्षर जो मंत्र है इसका उच्चारण करो, और फिर श्री विग्रह की स्थापना करो, और वहां क्या मिलेगा, वहां शिल्प अवसर कुछ नहीं है, मार्बल वार्बल कुछ नहीं पड़ा रहेगा वहां, तो वहां सरल मिट्टी जो है और पानी उसमें मिलाकर आठ प्रकार के श्री विग्रह की आराधना की जा सकती है, आठ प्रकार से, उसमें से एक है मन में भी, पर नारद मुनि उनको आज्ञा देते हैं एक श्री विग्रह की स्थापना करो, श्री विग्रह सेवन, ए एक्चुअली पांच जो प्रमुख भक्ति है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है श्री विग्रह का सेवन। तो स्थापना करो और बड़े विधि विधानों के साथ उनकी पूजा करो, फल अर्पण करो, फूल, स्वच्छ स्वच्छ जल। प्रभुपाद जी लिखते हैं तो यमुना जल नहीं है, गंगा जल नहीं है तो क्या करे, बोले कोई भी नदी का तुम पाश्चात्य देश में हो तो वहीं से जल पानी ले, पर स्वच्छ तरीके से स्वच्छ हो और उसको कलेक्ट करने का तरीका स्वच्छ हो, और इस तरह से उसकी भगवान की पूजा करो, फल फूल इत्यादि। और तुलसी दल, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा आवर डिसाइपल गोविंद दासी शी हैज टेकन सम सीड्स फ्रॉम इंडिया एंड प्रोड्यूस तुलसी इन द वेस्ट फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। एक्चुअली वहां तुलसी बढ़ता ही नहीं, तुलसी महारानी देख भी नहीं सकते हम पाश्चात्य देश में, मॉस्को में तो दूर की बात, लंदन कहीं भी नहीं दिखता, पर आज इस्कॉन के जितने मंदिर मैं देखा, मॉस्को में गया था, लंदन में गया था, लंदन में तो भक्तिवेदांत मैनर में ये अपना जो हॉल है ऐसे दो, एक इसका आधा बड़ा है हॉल है उसमें केवल तुलसी महारानी, और तुलसी महारानी का सुंदर शिव विग्रह स्थापना किए हैं और वहां हर रोज भोग लगता है उनका, बहुत सुंदर से एक हाउस बनाया, ग्रीन हाउस बनाया, उसमें अलग लाइट डालना पड़ता है क्योंकि बाहर रखे तो सूख जाती है, बहुत ठंडी के कारण तुलसी महारानी नहीं रह सकती, पर वो बहुत सारे ग्रीन लाइट ये लाइट डाल के सीड्स डाल के आज कोई भी इसको, एटलीस्ट मैं ये दो जगह देखा हूं, मॉस्को में तो इतना ठंडी होती है आठ तो बर्फ ही रहता है आठ महीना, पर वहां भी बहुत सुंदर से एक अलग कमरे में खास उसके लिए जहां तुलसी महारानी है वहां भक्ति है। एक सन्यासी हमारे मंदिर में आए थे और तुलसी पूजा में तुलसी को देखे, बोले कोई गड़बड़ी है तुम्हारों के भक्ति में, ये देखो कैसा सूख रहा है, तुलसी की सेवा करो तुम ठीक से। और उसके बाद हमारे हमने एक भक्त को लगाया, बोले तुलसी महारानी की ठीक से सेवा करो। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य लिखते हैं कि तो बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, बड़ा सिंपल सिंपल चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज। और इस तरह से और देश काल और सुविधाएं असुविधाएं को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में भी लिखते हैं, कई तथा कथित ब्राह्मण भारत के कहते हैं कि आप पाश्चात्य में ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया, वहां नहीं कहा गया। देश काल और सुविधाएं असुविधाएं को देखते हुए, देश काल पात्र देखकर कुछ चीजें हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ऑफरिंग में कुछ चीजें दे सकते हैं, कुछ चीजें नहीं, इसीलिए एक आचार्य का होना जरूरी है। ऑफ कोर्स हम अपने मनगढ़ चीजें नहीं कर सकते, गलत बात है, अपराध हो जाएगी, सेवा अपराध हो जाएगी, श्री विग्रह के प्रति सेवा अपराध, पर कुछ चीजें एडजस्ट किया जा सकता है, प्रभुपाद जी ने वहां बताया तात्पर्य बहुत सुंदर से। तो इस तरह से फिर भक्त को, भक्त का कैसा होना चाहिए जो श्री विग्रह की सेवा कर रहा है, संयम रहकर, आत्मसंयम रखकर, इंद्रियों को नियम में रखकर, शांत स्वभाव से, संतुष्ट स्थिति में जो कुछ मिला, क्योंकि जंगल में कहेगा कि अरे डोसा नहीं मिला मुझे और विचलित हो गया मन, नहीं, जो फल कंदमूल जो मिला उसमें संतुष्ट, कि संतुष्ट मन से श्री विग्रह की सेवा होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि कम से कम ब्राह्मण दीक्षा होनी चाहिए, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पाता एव कल्पते। कृत्रिम रूप से दे रहे नहीं, हरिजन गिरिजन सब अंदर आ सकते, नहीं हम नहीं, हम ऐसा नहीं कहते, कोई भी आ सकता है अगर योग्यता प्राप्त किया है तो। ये संयम, मन संयम होना चाहिए। प्रसाद देखेगा बोलेगा भोग लगाने के बाद ये चार चीज मेरे को, अभी लगाने से पहले ही तुम सोच रहे हो क्या खाओगे तुम उसमें से, तो संयम होना चाहिए। तो कम से कम ब्राह्मण दीक्षा का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि सिर्फ 50 पैसे का था, ब्राह्मण दीक्षा का मतलब संयम होना चाहिए, शांत स्वभाव से होना चाहिए और संतुष्ट होना चाहिए, जिस स्थिति में भी भगवान रखे संतुष्ट है। मन की संतुष्टि, शांतता और संयम, तब हम शिव विग्रह की सेवा करने योग्य हैं। और इस तरह से फिर पूरा समय भगवान के लीला स्मरण में, नाम जप के बाद बाकी समय जो है भगवान के जो अनंत अवतार हुए उन अवतारों के सुंदर लीला का स्मरण करते हुए समय निकालना चाहिए, ध्रुव महाराज को बता रहे हैं। फिर महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हृदय में भगवान का हमेशा ध्यान करना चाहिए। गंभीरता और निष्ठा के साथ मनसा वाचा और कर्मणा भगवान की सेवा करना चाहिए, और इस तरह करने से उस व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, धर्मार्थ का मोक्ष, और खास मोक्ष के लिए बड़े ध्यान पूर्वक इंद्रियों को संयम करके 24 घंटे इस तरह से समाधि में होना चाहिए। इतना आसान नहीं है भक्ति करना। ऑफ कोर्स तीन तरह की भक्ति है, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। अभी हम जो कर रहे हैं साधना भक्ति है। कम से कम जो 16 माला करते हैं उस समय तो कम से कम भगवान का स्मरण हो, उस समय दूसरा चीज ना हो, बाद में धीरे 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 दूसरे समय भी। स्मर्तव्य सततव विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेध्यास्युर एत योरेव किंकरा। शास्त्रों में जितने सारे विधि बताए गए हैं उन विधियों का उद्देश्य है भगवान का स्मरण हमेशा हो, निषेधों का उद्देश्य है भगवान का विस्मरण कभी न हो। कीर्तनीय सदा हरि सततम कीर्तयन्तो माम यदंतश्च दृढ़व्रता। वो दृढ़ता होनी चाहिए, कब वो मैं स्तर पर आऊंगा, जब एक क्षण भी मैं भगवान को नहीं भूलूंगा। ये भाव भक्ति का स्तर है। क्षांतिर अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण के लिए अगर व्यर्थ हो गया भगवान की विस्मृति में तो बहुत दुख होना चाहिए, एक क्षण के लिए मैं भगवान को भूल गया। हम जान सकते हैं कि ध्रुव महाराज ने क्या तपस्या की होगी। 6 महीने के अंदर 100% उन्होंने ऐसा ध्यान लगाया, भगवान डायरेक्ट साक्षात भगवान विष्णु वहां आ गए और उनका वजन, ध्रुव महाराज का वजन इतना बढ़ गया। महाराज उत्तानपाद के गोद तो दूर की बात, पृथ्वी के ऊपर एक अंगूठे पे खड़े हुए थे, वो अंगूठा उनका एक पैर पे खड़े हुए थे, उस अंगूठे के वजन से पृथ्वी डगमगा रहा था, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। उदाहरण दिया जाता है जिस प्रकार एक बड़े हाथी को एक छोटे नाव में बैठा दिया जाए और एक कदम रखेगा तो नाव ऐसा जाता है, एक कदम रखेगा तो नाव ऐसा, इस तरह से ध्रुव महाराज की तपस्या में जब उन्होंने भगवान को पूर्ण रूप से अपने हृदय में ऐसे बांध के रख दिया कि नहीं जा सकते कहीं, वो 24 आवर्स 6 महीने के अंदर उन्होंने प्राप्ति की। क्या दृढ़ता, क्या निष्ठा, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन। उसी ने तो नारद मुनि की कथा भागवत में दी गई है। तो हम क्या सीख सकते हैं, ये जो प्रभु नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सम इंस्ट्रक्शंस हाउ टू सैटिस्फाई एंड प्लीज श्री हरि। गुरु हमें आज्ञा देते हैं किस तरह से यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। अंततः जीवन का उद्देश्य क्या है, सनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्, भगवान को प्रसन्न करना। और भगवान को प्रसन्न करने का तरीका जो है श्री गुरु हमें बता रहे हैं, उनकी आज्ञा को गुरुमुखो पद्मवाक्य चित्ते ते कोरियो आज्ञा आरना कोरियो मोने आशा, आचार्य कहते हैं हमारे। तो ये जो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सारे मार्गदर्शन दी, इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी अलग अलग जगह पे और भूरिजन प्रभु भी अपने अनविलिंग इज लोटस फीट नाम के पुस्तक में बहुत सारे अलग अलग प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उनमें से चुन के कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं जो हमारे लिए ध्यान देने योग्य है। پہلا چیز، حالانکہ دھرو مہاراج کی اچھا بھوتک تھی، بھوتک اچھا سے وہ آئے تھے، مجھے ایک پد چاہیے جو تینوں لوکوں میں کسی کو نہیں ملا ہو، مطلب بھوتک سنسار میں ہی. پر نارد منی نے سچ مچ میں کرپا دینے کی اچھا سے دھرو مہاراج کی درڑتا کا پورا فائدہ اٹھا کر انہیں اس طرح سے آگیا دی جس سے وہ پورن روپ سے بھگوان کی بھکتی میں مگن ہو جائے. یہ گرو کا کرتویہ ہے. بھلے شش کیسے بھی ہو، کوئی اچھا سے آئے، ایک سدگرو جو ہے اس کے اندر وہ ایک چیز دیکھتا ہے، اس کے اندر ایک کچھ پرامانکتا ہے، کچھ درڑتا ہے، اور اس کو وہ صرف دیکھ کر، جیسے ایک چھوٹی سی چنگاری ہے اس کو تھوڑا ہوا مار کر اس میں سے جولت اگلی، تیور اگلی بنانا، یہ گرو کا کام ہے. اور نارد منی نے، جیسا ہم دیکھتے ہیں پربھوپاد جی، پربھوپاد جی جب پاشچات دیش میں گئے، یہ ہپی لوگ تھے کیا معلوم، ایک ویکتی تو پی کے آیا اور ایک ٹوائلٹ پیپر ایسا پھینک کے چلا گیا پربھوپاد کے پاس، بولا چلو کم سے کم سیوا کیا کچھ. تو ایسے ہپی لوگ جن کو کچھ بھی نہیں معلوم کیسا رہنا ہے، کیسا اٹھنا ہے، کیسا کھانا ہے، کیسے سونا ہے، پہلے گروپ کے لیے تو دیکھا کے بعد بولا گیا کہ چار نیم کا پالن کرو. دیکھا دینے کے بعد نوٹس لگائے جو جو دیکھا لیے ہیں ان کو کم سے کم یہ کرنا ہے. میرے پاس وہ چٹھی بھی ہے جو نوٹس 1966 میں انہوں نے لگایا، اس کا زیروکس کاپی میں یہاں لایا تھا، شاید آپ لوگوں کو دکھایا تھا جب میں نارد منی کا پرتھم اسکند کا کیا. پر ان کے اندر وہ ایک چھوٹی سی پرامانکتا دیکھی، سنسیئر ڈیزائر ٹو سرو، اور اس کو انہوں نے دھیرے دھیرے مارگ درشن کرتے مارگ درشن دیا، یہ کرو وہ مت کرو، اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو. اور آج ہم دیکھتے ہیں کس حد تک وہ پہنچ گئے، کیونکہ انہوں نے بڑی تیورتا سے اس کو، بڑی ویوسایاتمکا بدھی تیورتا سے اور بڑی درڑتا پوروک انہوں نے اس مارگ درشن کے دیے ہوئے جو شکشا ہے اس کو گرہن کیا. تو یہ پہلا چیز ہے. اور خاص بھگوان کی سیوا میں لگایا، کسی الگ الگ دیوی دیوتاؤں کی سیوا میں نہیں لگایا، یہ اچھا ہے تو ادھر جاؤ، وہ اچھا ہے ادھر جاؤ، نہیں، ڈائریکٹ اسی ہری کو پرسن کرنا ہے. اور کس طرح سے اندریوں کو سنیم کرنا ہے، ایسا نہیں کہ چھوڑا تم یہ بھی کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو ساتھ ساتھ میں یہ بھی کر سکتے ہو، نہیں، کلیئر کٹ، نہیں نہیں یہ 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 نہیں، اور یہ یہ کرنا ہے، نینترن کرنا ہے، تھوڑا بہت نینترن کے بنا، سنیم کے بنا اور کچھ پراپت نہیں ہوگا، کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا ہے جیسے کہتے ہیں نا ہندی میں. دوسری بات یہ ہے، ایک گرو اور ششیہ کا سمبندھ کیسا ہونا چاہیے، یہاں ہم دیکھنے کو، بڑا مہتوپورن یہاں دیکھنے کو ملتا ہے. نارد منی کے اندر وہ طاقت تھی، وہ شکتی تھی کہ دھرو مہاراج کی اچھا کو وہیں پورن کر دے، ان کے اندر بھی وہ طاقت تھی کہ اس اچھا کو پورن کر دے، پر انہوں نے اس اچھا کو پورن کرنے کا چیز نہیں بتایا انہیں، بلکہ انہیں یہ بتایا کہ کیسے بھگوان کی بھکتی کرے. تو ایک سدگرو جو ہے وہ بھوتک اچھاؤں کی تمہاری پورتی کے بدلے وہ اس ویکتی کو سکھاتا ہے، سچا کرتویہ جو ہے وہ ہے ایک ویکتی کو بھگوان کی شدھ بھکتی میں لگانا. جیسے بھگوان نے ارجن کو گیتا بتایا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، چاہے تو وہ لڑ کے ختم کر سکتے تھے پورے یدھ بھومی کو، وہ چاہے تو کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے بولا کہ یہ یہ جاؤ لڑو. مام انوسمرن یدھ چ، میرا سمرن کرو اور یدھ کرو. تو یہ گرو کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری اچھا کو پورن کرنا، تتھاستو 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 بس آشیرواد بابا مہاراج یہ دلا دو یہ لے، وہ گرو نہیں ہے، کچھ سونا دلا دو یہ دلا دو وہ دلا دو اور ختم کر دو بات. چور گرو چنڈال چیلا، نرک میں جائے ٹھیلم ٹھیلا سے کہتے ہیں، دونوں نرک میں جائیں، ایسا گرو اور ایسا چیلا. سدگرو کا مطلب ہے جو किसी ना किसी तरह से उसको भगवान की शुद्ध भक्ति में लगाए, उसके अलावा और कुछ नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। तीसरी महत्वपूर्ण बात देखने को मिलता है यहां कि भक्ति में दो चीज है, साधन यानी भक्ति और साध्य। साध्य क्या है? भगवत धाम को प्राप्त, भगवत धाम की प्राप्ति। तो यहां एक महत्वपूर्ण चीज हम देखते हैं कि निस्वार्थ शुद्ध भक्ति साध्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कृष्ण भावना का सार है, साधन और साध्य है, पर साधन जो है वो कृष्ण भावना का सार है। साध्य जरूर, साध्य उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना साधन। दूसरी जगह में योग में कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, साधन सीढ़ी के समान है। साध्य प्राप्त किए तो साधना छोड़ दो, पर भक्ति में साधन और साध्य दोनों बराबर है। पर साधन ही साध्य है और साधन ही सबसे महत्वपूर्ण है, सार है। इसीलिए एक बार प्रभुपाद से पूछा गया, आप हरे कृष्ण जप रहे हो, किस लिए जप रहे हो? ताकि हम हरे कृष्ण जपते रहे। वी चैंट हरे कृष्ण टू चैंट हरे कृष्ण ऑलवेज, कीर्तनीय सदा हरि। तो हालांकि एक शुद्ध भक्त के लिए साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण जप रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं। भगवत धाम जाने के बाद क्या करेंगे? मंत्र जपेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे। तो एक शुद्ध भक्त के लिए साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं है, उसके लिए बराबर है वो। और उसकी एकमात्र इच्छा रहती है और वो है कि मैं जहां भी हूं प्रभु, मैं आपकी सेवा में लगे रहूं। इसीलिए मुक्ति भी नहीं मांगते भक्त। भगवान चाहते मुक्ति चाहिए, भगवत धाम चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोलवेच श्रीधर को बोला, गोलोक धाम जाना चाहते हो? बोले नहीं चाहिए मुझे। अगर गोलोक धाम जा रहा हूं और वहां आपकी सेवा नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए गोलोक धाम, मुझे आपकी सेवा चाहिए, चाहे कहां भी हूं मैं, क्योंकि आपकी सेवा में जो आनंद है वही आनंद मेरा परिपूर्णता है। चाहे मैं भगवत धाम में हूं, चाहे इस संसार में हूं, चाहे मैं नरक में हूं। तो ये एक चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, आपके संस्था में कितने शुद्ध भक्त हैं? तो प्रभुपाद जी ने सेक्रेटरी से पूछा, कितने अपने मेंबर हैं? बोले फलाना इतने नंबर, उतने शुद्ध भक्त। इसका मतलब क्या है? तुम जानो या न जानो, पर जो तुम कर रहे हो वो शुद्ध भक्ति है। पर हम, हमारी चेतना भी अशुद्ध है, हमें ये सब सेवा करना परिश्रम लगता है, पर एक शुद्ध भक्त के लिए परिश्रम नहीं है। जिस प्रकार एक आम जब कच्चा आम है, वो आम ही है पर कच्चा है, कहां कहीं वो थोड़ा मीठा लगता है और सब जगह खट्टा ही लगता है। पर अगर वो आम उस पेड़ से टिके रहे और पक जाए तो जहां भी उसे दांत लगाओ मीठा ही मीठा है। साधना भक्ति में कभी भक्ति अच्छी लगती है, मीठी लगती है, और कभी कड़वी लगती है। कभी जब अच्छा लगता है, कभी जब नींद आता है। भाव और प्रेम भक्ति में नींद का सवाल ही नहीं। निद्राहार विहार कादि विजितो संख्या पूर्वक नाम गान नटी भी कालावसानी। हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी, हम देखते हैं एक या डेढ़ घंटा कभी सोते थे और कभी कभी इतने मग्न रहते थे कि वो भी भूल जाते थे। कृत्रिम रूप से हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते, पर हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह पर हैं वो। तो उनकी एक ही इच्छा है कि मैं जहां भी हूं मैं आपकी सेवा में लगे रहूं, क्योंकि वो हमारा कनेक्शन है। भगवान, भक्त और भक्ति, ये परम सत्य है और सब नश्वर है। और वो भगवान को कहते हैं कि प्रभु आप डिसाइड करो, आप निश्चय करो कि आप मुझे स्वर्ग में सेवा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं स्वर्ग में आपकी सेवा करूं, नरक में करूं या भगवत धाम में करूं। आपकी इच्छा जहां है वहां मैं रहना चाहता हूं, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं भगवत धाम जाके आपकी सेवा करूं। ये शुद्ध भक्त की चेतना है। और चाहे वो भगवत धाम में रहे चाहे वो इस संसार में रहे, वो मुक्तात्मा है, वो हमेशा भगवत धाम में रहता है। प्रभुपाद को एक बार ऐसे मॉर्निंग वॉक के लिए घुमाते घुमाते एक ऐसे गली से ले गए पिछवाड़े से जहां बहुत ही गंदा था, कचरा था। तो भक्तों ने बोला, सॉरी प्रभुपाद, वी ब्रॉट यू थे वेरी अगली। नो नो नो, इट्स इन वैकुंठा, वैकुंठा सारा कचरा पड़ा हुआ इधर, न्यूयॉर्क में, वो भी वृंदावन में होते तो ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं मेरे गुरु की सेवा कर रहा हूं। और इसीलिए इहायस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलश्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त सो उच्यते। हर स्थिति में जब लगता है तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात भूरिजन प्रभु प्रभुपाद जी के तात्पर्य से इधर उधर निकालकर इस प्रसंग के द्वारा निकाल के दिखाते हैं कि नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को चाहे तो उनकी इच्छा उस समय पूर्ण कर सकते थे, पर वो प्राप्त करके क्या ध्रुव महाराज सुखी होंगे? क्या फायदा? हिरण्यकशिपु को उसको था, वो कभी तृप्त नहीं हुआ। जब तक भौतिक इच्छाएं, ध्रुव महाराज के हृदय में भौतिक इच्छाएं थी इस परिस्थिति में, इस समय, तो चाहे तो वो दे सकते थे, पर एक सदगुरु उसमें इच्छुक नहीं है कि ये सब ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, वो दे दूंगा। उन्हें कहते हैं कि शुद्ध भक्ति करो तुम, और एक्चुअली जब तुम भक्ति में लग गए ऑलरेडी तुम्हारी परिपूर्णता प्राप्त होगी, क्योंकि साधन और साध्य एक ही है, पर सिर्फ हम जानते नहीं है अभी। जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे उस सेवा में जो आनंद मिलेगी वही हमारे लिए सर्वस्व। एक्चुअली कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण, कृष्ण की लीला और कृष्ण के धाम में जैसा कृष्ण में और कृष्ण के इन चीजों में अंतर नहीं है, इसी तरह से कृष्ण और कृष्ण की सेवा में कोई अंतर नहीं है। जब हम उस स्तर पर आ जाएंगे, कृष्ण पूर्ण रूप से समझ जाएंगे, तो हम जानेंगे कृष्ण और कृष्ण की सेवा में कोई अंतर नहीं है। और जब कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं और कृष्ण का अनुभूति कर रहे हैं, कृष्ण को नाम के द्वारा जिह्वा पे अगर नृत्य कर रहे हैं, तो फिर क्या तकलीफ है? कहां कहीं भी रहे हम, क्या तकलीफ है? जहां भी रहे, वो जगह वैकुंठ धाम है, वो जगह भगवत धाम है, वो गोलोक धाम। गुरु का कर्तव्य क्या है? कि मार्गदर्शन देना कि किस तरह से पूर्ण शुद्ध भक्ति जो है वो लगाए। Engage in activities and attitudes that will deepen the process. जैसे जैसे प्रगति करता गया, किस प्रकार के क्रियाओं में और किस प्रकार की भावनाओं को शुद्धि करनी चाहिए। जैसे एक आदर्श माता पिता कैसे होते हैं, छोटा बच्चा है उसको ऑलरेडी अमूल जैसा कुछ उसमें ऐसे दूध डाल के या राइस भी देते हैं, तो उसको एकदम पीस पीस के एकदम क्या करते हैं उसको एकदम, हाँ, सेमी सॉलिड बना के द्रव्य ऐसा बना के उसको चम्मच से खिलाते हैं। पर वो 5 साल का 10 साल का हो जाए तो उसको नहीं ऐसा खिलाते, उस समय उसको अलग तरीके का खाना। और 16 साल का हो जाए तो एकदम पनीर मसाला फर्स्ट क्लास, अभी हजम कर सकता है वो। इसी तरह से एक आदर्श गुरु जो होता है शिष्य के स्तर को देखकर उनको और भी गहराई तत्व ज्ञान सेवा का के हर एक चीज का, कल हम इसके ऊपर थोड़ा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। काम हमको क्या है, काम वासना मतलब स्त्री और पुरुष के ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए, वहीं छोड़ देते हैं, पर ये काम और भी गहराई स्तर पर जाता है तब हमें समझ में आता है कि क्या क्या चीज काम में आ सकता, काम के रूप में प्रकट हो सकता है, स्थूल और सूक्ष्म। तो एक स्तर पर या 4 नियमों का पालन कर रहे 16 माला, वेरी गुड। जैसे मैंने कहा किसी घर जाओ उसके बच्चे से पूछो, बेटे कौन से क्लास में है? 4th में हूं अंकल, वेरी गुड, शाबाश। 2 साल के बाद गए, कौन से क्लास में हूं बेटा? 4th में हूं अंकल। 4th में दो साल के बाद भी, हां अंकल आई एम फिक्स्ड डिवोटी, अभी फिक्स हो गया हूं, चौथी से हिलूंगा नहीं, अभी हो गया 16 माला 4 नियम, हो गया फिक्स डिवोटी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ए, चेन डाल के उसने डाल दिया है, बोट में बैठा हुआ है और चेन डाल दिया और वो ये चला रहा है नाव, पसीना छूट रहा है, नाव चल रही है पर एक इंच आगे नहीं बढ़ा, पार क्या करेगा नदी को। तो साधना चल रही है पर ये निकली नहीं, वो उसी जगह में फिक्स डिवोटी। तो ये हमें नहीं बनना। तो एक आदर्श गुरु जो है वो समझता है शिष्य की स्थिति को देखकर, उसके अनुसार उनको ज्ञान देते हुए और स्तर पे बढ़ाता है, क्योंकि वो चाहता है कि शुद्ध भक्त वो तब तक तृप्त नहीं होता जब तक वो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त नहीं बन जाए। डिवेलप इन डिसाइपल्स हार्ट ए डीप डिजायर टू एंगेज इन कृष्णास लविंग सर्विस। गुरु की इच्छा है और किसी से चीज से उसकी इच्छा नहीं है, उनको कुछ और चीज से लेना देना नहीं, कि शिष्य के हृदय में कृष्ण को प्रेम करने की और कृष्ण की सेवा करने की एक तीव्र इच्छा जागृत हो जाए, क्योंकि उसी में उसका सच्चा सुख और जीवन की परिपूर्णता मिलेगी, वो देना चाहता है। एक गुरु अगर इतने बड़े संस्था बनाकर एक भी शिष्य शुद्ध भक्त बनकर भगवत धाम चले जाए तो गुरु समझता है कि मेरा सारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। यह आंदोलन जो मैंने खोला, इतने सारे मंदिर खोले, इतने सारे भक्त बनाए, इतना सारा पैसा सब चला रहा है, एक भी अगर शुद्ध भक्त बनकर भगवत धाम गया तो यह सारा कोशिश यशस्वी हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे अक्सर कि ऑल द मनी एंड ऑल द टेम्पल्स, एग्जैक्ट वर्ड आई विल यूज, इवन एट द कॉस्ट ऑफ ऑल मनी एंड बिल्डिंग, इफ वन प्योर डिवोटी इज मेड देन माई मिशन इज सक्सेसफुल। इतने सारे बिल्डिंग, इतने सारे ये सब बन रहे हैं, पर इस सब के दौरान अगर एक शुद्ध भक्त बन जाए तो मेरा मिशन यशस्वी है। आप सोच लीजिए एक शुद्ध भक्त बनना कितनी मुश्किल बात है, इतना आसान नहीं है। इट्स वेरी ऑफकोर्स भगवान की कृपा से हो सकती है, पर इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं कि हम शुद्ध भक्त बन गए। अभी मनुष्य बन रहे हैं हम लोग, पहले दो चार पैर वाले थे, अभी दो पैर हुए बस, उसके बाद अभी थोड़ा ऊंचा जाना है हमको। सबसे ज्यादा जब गुरु देखते हैं कि एक शिष्य अच्छी तरह से नियमों का पालन कर रहा है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु की प्रसन्नता यह नहीं कि आपने कितना पैसा दिया, कितना बिल्डिंग बनाया, कितने पुस्तक वितरण किए, ये अच्छी बात है, ये सब अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि ये बुरा है, पर सबसे ज्यादा उनको प्रसन्न कब होता है, जब वो देखते हैं कि शिष्य बड़ी तीव्रता से नियमों का पालन कर रहा है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है। क्योंकि सच्चा शुभ चिंतक वो है तो तब तक तृप्त नहीं है जब तक आप वापस भगवत धाम नहीं जाओगे। ये सब करके अगर यहीं ठहर गए तो क्या फायदा। एक बार बड़ा इष्ट गोष्ठी हो गया वेस्ट में प्रभुपाद के समय, बुक डिस्ट्रीब्यूटर हजारों मात्रा में पुस्तक वितरण कर रहे थे, टेंपल प्रेसिडेंट आए हुए थे, संकीर्तन लीडर्स थे और गृहस्थ लोग थे जो ड्यूटी वर्शिप करते थे, पुजारी थे, गुरुकुल के बच्चे, गुरुकुल के टीचर्स थे, और कुछ लोगों का कहना था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट प्लीजिंग टू श्रील प्रभुपाद। तो थोड़ा टेंशन हो गया भक्तों में कौन सा, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता था कि प्रभुपाद को प्रसन्न करे, कोई विग्रह की सेवा कर रहा है गुरु को प्रसन्न करने के लिए, कोई पुस्तक वितरण कर रहा है गुरु को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और कृष्ण को प्रसन्न करना मतलब गुरु को, तो हर एक व्यक्ति चाहते थे। पर ऐसा एक फैल गया लोगों में कि नहीं नहीं ओनली बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्लीजेस श्रील प्रभुपाद द मोस्ट, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्लीजेस मी द मोस्ट. तो सब एकत्रित हुए थे, थोड़ा टेंशन. तो एक भक्त ने थोड़ा हिम्मत किया, प्रभुपाद विच सर्विस प्लीजेस यू द मोस्ट, कौन सी सेवा आपको पसंद करती है. और सब साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस, सब सुन रहे हैं, देखेंगे कौन सा सेवा पसंद. प्रभुपाद ने सबकी ओर देखा, इट विल प्लीज मी द मोस्ट इफ यू लव कृष्णा. सबसे मुझे ज्यादा प्रसन्न होगा जब आप कृष्ण से प्रेम करोगे, क्योंकि जब प्रेम करोगे तो उस व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ अपना त्याग करने के लिए तैयार हो जाओगे, और जो भी कर रहे हो उनकी प्रसन्नता के लिए करोगे. तो बोले ये यहां बताया जा रहा है. तो इस तरह से बहुत लंबी है, पर ले तो कथा ही समाप्त नहीं होगा, ध्रुव महाराज की कथा अध्यायों में जाता है. तो इस तरह से ऐसे तत्व देख सकते हैं नारद मुनि और ध्रुव महाराज. यहां एक लड़का आया है और उसे बहुत सारी भौतिक इच्छा है, पर उसके अंदर प्रामाणिकता है, उसके अंदर वो प्राप्त करने की दृढ़ता है. पर यहां नारद मुनि है, हमारे परंपरा के गुरु, उन्होंने एक आदर्श दिखाया कि किस तरह से मार्गदर्शन देकर किस तरह से ऐसे व्यक्ति को एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श गुरु या उनके प्रतिनिधि को कैसा होना है. और इसके बाद ध्रुव महाराज प्रणाम किए नारद मुनि को, तीन बार सरकमेंबलेट प्रदक्षिणा किए, हां प्रदक्षिणा किए, और तत्पश्चात उनकी अनुमति लेकर तुरंत वहां से मधुबन की ओर चल पड़े. और उन्होंने गुरुमुखो पद्म वाक्य चित्ते ते करियो आय, इसकी आदर्श उदाहरण यहां है. किस तरह से उन्होंने गुरु की आज्ञा को लेकर, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को लेकर, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदना, अपना सारा शक्ति उसमें डाल दिया, एक्स्ट्रा डाल दिया, जितना अपेक्षा भी नहीं था, उन्होंने इतनी बोला था, पर ध्रुव महाराज ने एक्स्ट्रा. एक फर्स्ट क्लास सर्वेंट का लक्षण है, तीन प्रकार के सेवक होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास. थर्ड क्लास मतलब एक चीज बोले तो दूसरा करेगा, सेकेंड क्लास मतलब जो बोले उतना ही करेगा, फर्स्ट क्लास मतलब जो बोले उसकी सार को समझकर उसे थोड़ा एक्स्ट्रा करेगा. हनुमान जी ऐसे सेवक थे. हनुमान जी को बोला गया सिर्फ ये अंगूठी सीता माता को ढूंढकर देकर आप आ जाना, बस इतना भी आ जाते. रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, कहा भरत सम तुम प्रिय भाई. तो हनुमान जी गए, उन्होंने निश्चय किया, अच्छा अंगूठी चार दिशा में चार लोगों को भेजे, पर सिर्फ हनुमान जी को क्यों दिए, क्योंकि हमें मालूम था कि ये जो है ना वापस नहीं आएगा जब तक काम नहीं करेगा. और ऐसा ही हुआ, एक महीना हो गया हनुमान जी को कोई मिले ही नहीं अंगद, और वो दोनों बोले क्या करें. तो उन्होंने कहा कि छोड़ो एक काम करते हैं, अभी वापस क्या दिखाएं, मुंह दिखाएं प्रभु रामचंद्र को, इससे अच्छा है उपास करके मर जाएंगे, बस उपास करेंगे शरीर छोड़ देंगे. तो उपास करने बैठ गए, बोले उपास कर रहे और कुछ काम नहीं, चलो हरिकथा करते हैं, राम कथा. तो राम कथा कर रहे थे, ऐसा ऐसा है प्रभु रामचंद्र का, ऐसा हुआ, फिर सीता का अपहरण हो गया, जटायु ले गया, ऊपर संपत्ति बैठा हुआ था, बोल रहा था बलदर लोग फास्टिंग कर रहे हैं, इसके बाद मेरा फास्टिंग होगा. पर तब तक ये राम कथा सुनते सुनते सुना गया, अरे जटायु मेरा भाई है. और तब संपत्ति ने दिखाया, कथा जाती है इस तरह से. और जब हनुमान जी गए, न केवल सीता माता को अंगूठी दिया, पूर्ण रूप से उनको सांत्वना दी, उनको हिम्मत, क्या बोलते हैं, सोलास एंड कॉन्फिडेंस, उनको ये विश्वास दिलाया. बेचारी वो हताश हो गई थी, इतने समय रावण के इसमें रहकर और कितने तरह से उसको तकलीफ दिया जा रहा था, उनके अंदर फिर से वो जागृत की कि आशा, और बाद में रावण को भी एक सैंपल दिखाया, मूर्ख क्या आने वाला, अभी तेरे को सैंपल दिखा भाई, शोरूम का एक सैंपल है, अभी गोडाउन से पूरा प्रोडक्ट ला रहे हैं हम लोग, मैं एक बंदर हूं, अभी लाखों असंख्य सेना आने वाली है, क्या होने वाले तेरे लंका का, मैं एक ही लंका का क्या किया हूं देख ले, एक्स्ट्रा थोड़ा काम करके। इसीलिए हनुमान जी राम प्रभु रामचंद्र इतने प्रसन्न हो गए, बोले वाह सेवक हो तो ऐसा। ऑफकोर्स कभी कभी इट इज बेटर टू बिकम ए सेकेंड क्लास नॉट थर्ड क्लास एंड नॉट आर्टिफिशियली फर्स्ट क्लास। कभी कभी समझे अरे गुरु की इच्छा यही है और थोड़ा एक्स्ट्रा छलांग मार दिए, और गुरु बोले अरे तेरे को ये सब क्यों किया था? उत्साह में कभी कभी होता है, हो सकता है जो जैसे नित्यानंद प्रभु जानते थे चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, बोले मत आना बंगाल से इस बार, फिर भी आ गए, बोले आ गए, अरे बहुत अच्छा किया तू आया, अरे मत आ बोले थे फिर भी आ गए। अंदरूनी बात समझना बहुत मुश्किल है, पर कम से कम हमको जो बोला गया उतना तो करना है। पर यहां हम ध्रुव महाराज को देखते हैं उन्होंने किस तीव्रता से इस चीज को ग्रहण किया, और फिर भागवत में वर्णन है किस प्रकार से उन्होंने जो भी चीज नारद मुनि ने बताया था वैसे का वैसे उन्होंने किया ही। पर उन्होंने कहा था कि इंद्रियों को संयम करो और भगवान के ध्यान को बढ़ाओ। भगवान के ध्यान को बढ़ाने का क्या तरीका, पहले महीने में हर तीन दिन में एक बार कुछ कपित्त फल जो मनुष्य नहीं खाते सिर्फ बंदर खाते हैं, मतलब केवल शरीर को बनाए रखने के लिए फल या ऐसे कुछ कुछ बेर उसको खाते थे, तीन दिन में एक बार बस, और सारा समय पूर्ण रूप से ध्यान में लगाना, एक पैर पे खड़े हुए और जिस तरह से नारद मुनि ने आज्ञा दी थी उसी तरह से, बट इंटेंसिफाइंग क्वालिटी और क्वांटिटी, तीव्रता बढ़ाए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, ये तीव्रता की पराकाष्ठा है। इधर देखते हैं दूसरे महीने में छह दिन में एक बार तृण पर्णादि भी सूखा घास और पत्ते इसको खाते थे, छह दिन में एक बार। तीसरे महीने अपभक्ष नौ दिन में एक बार केवल पानी पिया करते थे। चौथे महीने में बारह दिन में एक बार सांस लेते थे, सांस लेने से भी टाइम चला जाता है, मतलब ऐसा एकाग्र ध्यान भगवान के ऊपर, अपने जो स्वरूप बताया था उस स्वरूप पे ध्यान कर मन कहीं ना जाए, वहां से एकाग्र होकर एकाग्र रखते हुए। पांचवें महीने में एक पैर पर एक ऐसे स्तंभ जैसे खड़े हो गए और पूर्ण रूप से शत प्रतिशत भगवान के ऊपर उनका ध्यान था, उनके स्वरूप के ऊपर एक क्षण भी इधर उधर ध्यान उनका नहीं जाता था। भगवान उनके हृदय में होने के कारण उनका वजन भगवान जैसा ही हो गया, और इस तरह से जैसे मैंने बताया हाथी का उदाहरण दिया, पृथ्वी डगमगाने लगा, हिलने लगा, पूरे ब्रह्मांड जो है, यहां तक कि जब ध्रुव महाराज ने अपने सारे नव जो छिद्र हैं शरीर के उसको जिस तरह से उन्होंने रोक लिया और सांस बंद कर लिया, तो पूरे ब्रह्मांड में सांस रुक गया सबका, सब भागे भागे ब्रह्मा जी के पास, बोले क्या हो रहा, क्या हो रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। ब्रह्मा जी बोले मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, चलो भगवान के पास जाते हैं। और यहां तो सब गए। इसके तात्पर्य में रूपा जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि देखिए एक पांच साल का लड़का कहीं एक कोने में पृथ्वी के ऊपर खड़ा हुआ तपस्या कर रहा है, पर चूंकि उस तपस्या का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में अनुभव, उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य भी लिखते हैं, इस तरह से एक शुद्ध भक्त अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो उसका प्रभाव सब जगह धीरे 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 फैल जाता है। कल मैं अहोबलम गया था, परसों अहोबलम से हम लोग आ रहे हैं, अहोबलम में ऐसा टूटा फूटा नरसिंह देव का मंदिर थे नव नरसिंह, पर उसमें से आज सब फर्स्ट क्लास हो गए, और उसमें से एक मंदिर जो है इस्कॉन के एक मंदिर ने 10 लाख रुपया देकर वहां रिनोवेट करके बन गया। वृंदावन किस तरह से परिवर्तन हो गया है, एक भक्त के प्रभाव से लाखों लोगों को, करोड़ों पुस्तक, करोड़ों भक्तों के, करोड़ों लोगों के जीवन में कृष्ण प्राप्त हो रही है, किसी न किसी तरह से भक्ति का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। हजारों हजारों, मैं तो कह सकता हूं लाखों भक्तों का आज तक, प्रभुपाद जी के समय से आज तक लाखों लाखों भक्तों का जीवन उद्धार हो रहा है, भक्ति में ले रहे हैं। सैकड़ों ऐसा आश्रय मंदिर मिला है जहां लोगों को कम से कम पता चलता है कि शुद्ध भक्ति क्या है। करोड़ों लोगों हर रोज प्रसाद खा रहे हैं। एक व्यक्ति की तीव्र इच्छा भगवान को प्रसन्न करेगी कृष्ण भावना बांटकर, ये हम देख सकते हैं। एक व्यक्ति की तपस्या, इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में पड़ता है। इट इज नॉट इमेजिनरी। आज फिर भी सब कुछ चल रहा है दुनिया, इतना घोर कलयुग के कारण, क्योंकि कुछ ऐसे भक्त हैं जिनकी तीव्र इच्छा है, प्रार्थना है कि सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। तो सोचिए प्रभुपाद जी की कृपा से कितने लोगों को यह सुनहरा मौका है कि हम भी इस तरह से सेवा कर सके और भगवान को प्रसन्न कर सके। तो एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सुनेंगे तो शायद हम थोड़े निराश हो जाएंगे, प्रभु जी ठीक है भक्ति तो करना, पर ये तो बहुत हो गया, सांस बंद करना, खाना, एक एकादशी करने को तो सोचते हैं हम लोग, वो भी निर्जल करने के लिए पहले ही वैष्णव कैलेंडर मिलते हैं, पहला जून में देखते हैं कौन सा दिन एकादशी है निर्जल, और आप बोल रहे हैं तो बहुत ज्यादा अपेक्षा हो गया हमसे। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, वी कैनॉट बी, मैं आपको पढ़ना चाहता हूं उसके उसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी, हां, ध्रुव एज आचार्य टीचर्स बाय सीवियर ऑस्टेरिटीज एंड पेनेंसेस हाउ टू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस। ध्रुव महाराज एक आचार्य के रूप में दिखा रहे हैं अपने उदाहरण से, तपस्या से, कि किस तरह से भगवान की भक्ति में व्यक्ति को लगना चाहिए। एक शुद्ध भक्त बनना इतना आसान नहीं है। ध्रुव की तुलना में हम नगण्य हैं और हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है ऐसी तपस्या करने की, पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें कंसेशन दिया गया है, छूट दिया गया है, तो कम से कम जो छूट दिया गया है, मिनिमम, बेसिक मिनिमम, और वो भी हम कहते हैं कि बहुत तपस्या कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको अपने तपस्या से बहुत अहंकार है, ध्रुव महाराज की कहानी पढ़ी, जो भी बड़ा बलून है ना अहंकार का फूट जाएगा। तो वी शुड नेग्लेक्ट अवर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, पर जिस प्रकार ध्रुव महाराज दृढ़ पूर्वक भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना कर्तव्य भक्ति में लगे थे, इस तरह हमें भी करना चाहिए और दूसरे जीवन की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि अभी थोड़ा कर दूंगा और अगले जीवन में कंटिन्यू करूंगा, बोले अगले जीवन की अपेक्षा रखना ही नहीं है, अभी खत्म कर डालो, शायद अगले जन्म में भी, पिछले जन्म में भी बोले थे इसीलिए आए हो, अभी ऐसे बोलते बोलते चला जाएगा ऐसे जीवन, और चैतन्य महाप्रभु का 10,000 साल चला जाएगा, ट्रेन छूट जाएगा। सो इन इस्कॉन वी आस्क डिवोटीज टू फॉलो 4 principles, 16 rounds, टेक ओनली प्रसाद। सारी सी बात है, तो इसके आधार पर संक्षिप्त रूप में मैंने सोचा ये तपस्या, ध्रुव महाराज की तपस्या जो है ये बहुत ही अनुस्मरणीय है, पर इससे स्फूर्ति लेकर, खास करके हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, तो क्या, किस दिशा में हमको ऐसा सोचना चाहिए, किस दिशा में हमें अग्रसर होने के लिए सोचना चाहिए, तपस्या है क्या? ऋषभ देव कहते हैं पांचवें स्कंद में, जब अपने बच्चों को, 100 बच्चों को शिक्षा देते हुए, जैसे वो सब घर बार छोड़कर वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तब बोलते हैं नायम देहो देवभाजान लोके कष्टान कामान अर्हति विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का। मनुष्य योनि तपस्या के लिए, आप चाहो या नहीं चाहो, खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना, इसके लिए भी तपस्या करना पड़ेगा आपको। पर यह तपस्या कैसा है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इतना तपस्या, पूरा जीवन, मनुष्य जीवन पूरा भाग दौड़, सुबह गया तो रात को 12 बजे आया, खाना तो 4 ही रोटी है, और क्या मिला, कमल दल जल जीवन तलमल, एक मृग तृष्णा जैसा ऐसा दिखा, रेगिस्तान में एक छोटा बिंदु जैसा, और वो पीने के बाद लगा रहे प्यास भी नहीं बुझा, पूरा जीवन ऐसे ही चला गया। पर दूसरी जगह तपस्या क्या है, तपो दिव्यम पुत्र का, दिव्य तपस्या, जिससे यस्मात सत्वम शुद्धित, अपने अस्तित्व को शुद्ध करना है, यानी अपने शुद्ध करना मतलब, किसी चीज को शुद्ध करना मतलब उस चीज को अपने मूल स्तर पर लाना, है कि नहीं, अशुद्ध हो गया मतलब क्या, उसके ऊपर मिट्टी गिर गया, शुद्ध करना मतलब, साफ करना मतलब क्या, उसको अपने मूल स्तर पर लाना, सफाई करके मूल स्तर पर, वो सफाई करना तपस्या है। माताओं को मालूम है हर रोज घर सफाई करना पड़ता है, खास करके घर अगर मेन रोड के बगल में हो तो दिन में 2 बार साफ करना पड़ता है, तपस्या है, क्यों, क्योंकि धूल जमता रहता है, नहीं तो 2 दिन हो गया तो वहां क्लीनिंग करना पड़ता है। ये न सत्वम शुद्धि, शुद्ध करना चाहिए, क्यों, क्यों शुद्ध, यस्मात ब्रह्म सौख्यम, शुद्ध अवस्था मतलब आत्मा जब शुद्ध हो जाता है तो अपने मूल अवस्था में आ जाता है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, और मूल अवस्था में आ गया तो सच्चित आनंद, तो सत का अनुभव होता है, यानी शरीर से परे समझता है, तो मृत्यु आ जाए बुढ़ापा आ जाए उसको कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, सत चित ज्ञान आ जाता है उसको, मैं कौन हूं, भगवान कौन हूं, मेरा भगवान के साथ नित्य रिश्ता क्या है, और इस संसार के साथ मेरा रिश्ता क्या है, और आनंद, इसीलिए वो भगवान के संपर्क में जो रिश्ता है उसमें आनंद का अनुभव करता है, जहां सचमुच में आनंद है। तो तपस्या मतलब और कुछ नहीं, ना हम वेदे न तपसा न दाने न चिज्जया, ऐसा कुछ नहीं, तपस्या का मतलब है अपने अस्तित्व को शुद्ध करना। अब सवाल यह उठता है कि कैसे शुद्ध करें महाराज, कैसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करें, शरीर है, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरिव बुद्धिः परतस्तु सः। सबसे पहले इंद्रियां हैं यानी शरीर, शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, शरीर से ऊपर है मन, मन को शुद्ध रखना चाहिए, मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि को शुद्ध रखना चाहिए, बुद्धि से ऊपर है अहंकार, उसको भी शुद्ध रखना चाहिए, और ये जब शुद्ध रहा तो हम शुद्ध रहेंगे सच्चिदानंद, और तब आनंद का महसूस करेंगे। यस्मात् ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख, आध्यात्मिक सुख, और क्यों आध्यात्मिक सुख, अनंतम, भौतिक सुख जो है आदि अंत है, उसका आदि है उसका अंत है, पर आध्यात्मिक सुख है अनंतम। तो शरीर को कैसे शुद्ध किया जाए, शरीर की अशुद्धि क्या है, शरीर और अविद्या जाल, ये अविद्या का जाल है, ये अपने प्रारब्ध कर्म से मिला हुआ है, और हृदय में संचित कर्म पड़ा हुआ है, करोड़ों करोड़ों जन्मों का बीज पड़ा हुआ है, जो जैसा जैसा परिपक्व होगा दूसरा शरीर दूसरा शरीर दूसरा शरीर, करोड़ों करोड़ों शरीर से गुजरना पड़ेगा, शरीर यानी सारे पिछले पापों का एक फल, अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा शरीर है, दष्टपुष्ट शरीर है, अच्छा शरीर, सुंदर शरीर है, जो भी है, निरोग शरीर है, तो इसका मतलब अच्छा कर्म का फल है, सिर्फ कर्म का फल है। तो इस कर्मों से कैसे मुक्त हो? यज्ञशिष्टा अशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषयी भुंजते ते तो अघम पापा ये पचंती आत्मकारणा। इस शरीर को बनाने के लिए खाना पड़ता है, खाना तो जरूरी है, भूलते नहीं हम, पर यज्ञशिष्टा अशिन संतो अगर वो प्रसाद, अगर वो खाना भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाए, कृपा के रूप में स्वीकार करे, तो न केवल शरीर को शक्ति प्रदान करता है, करोड़ों जन्मों के पाप को निकाल देता है। जीवे फेले विषय सागरे तार मध्य जीवाद लोभ हुए ताके जिता कठिन संसार। तो प्रसाद सेवन ये बहुत बड़ी तपस्या है। ध्रुव महाराज ने पहले महीना सिर्फ कपित फल खाए, जो केवल बंदर खाते हैं। दूसरे महीने सिर्फ पत्ते खाए। अरे हमको उतनी तपस्या करने की नहीं बोली जा रही है, सिर्फ प्रसाद खाओ भाई, वो तपस्या है। जो भी खाओगे भोग लगाकर प्रसाद खाओ, अरे ढेर सारा खाओ, अच्छा फर्स्ट क्लास बनाकर खाओ, पर केवल प्रसाद खाओ, उतनी तपस्या है बस। मतलब दो मिनट भोग लगाकर खाओ और इधर उधर मत खाओ उल्टे सीधे चीज, वो भी तपस्या है कलयुग के जीव के लिए। चार सेकंड बैठने के थे फास्ट फूड, जैसा भूख लगा तुरंत खो खा लेना, कुछ जो साधे दिखा, इतना तो तपस्या करो। दूसरा शरीर यानी इंद्रियां, जड़ेन्द्रिय ताहे काल, इंद्रियां जो है अशुद्ध अवस्था में है। इंद्रियां क्यों अशुद्ध है? जैसे काम क्रोध लोभ इत्यादि है ना, इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो है, इंद्रियां मन और बुद्धि सब जगह बैठ गई है, अशुद्ध हो गया है, इंद्रियां अशुद्ध हो गए, आंखें सिर्फ अशुद्ध चीजों को दर्शन देखना चाहती है, कानें सिर्फ अशुद्ध चीजों को सुनना चाहती है, जीवा सिर्फ अशुद्ध चीजों को भोग आस्वादन करना चाहती है, नाक सिर्फ अशुद्ध चीजों को सूंघना चाहता है, त्वचा सिर्फ अशुद्ध चीजों से संपर्क रखना चाहता है। तो वो तपस्या क्या है? अशुद्ध चीजों से संपर्क नहीं, न केवल वो बल्कि शुद्ध चीजों से हमेशा संपर्क। वाचां से वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हर मंदिर मार्जनादिशु मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ। आंखों को भगवान के सामने भगवान का दर्शन करने, ये थोड़ा मेरा खास उदाहरण मैं देता हूं। हमारी आंखें जो है ये एक क्या बोलते हैं, कैमरा के समान है, आंखें लेंस के समान है और हृदय वो रील है ना, फिल्म, फिल्म के समान। जो भी आंखों से देखते हैं फिल्म बैठ जाता है। अजामिल का ऐसे हुआ, एक 16 सेकंड, 16/1 सेकंड देखा उसने एक दृश्य और उसके हृदय में बैठ गया, और फिर ध्यान करना उसके ऊपर। अगर उस फिल्म को डार्क रूम में ले जाके प्रोसेस करते हैं ना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है, उसके बाद फ्रेम लगा के चिपका देते हैं हम लोग। तो अजामिल ने एक फोटो क्लिक किया और फिर घर में गया, आंख बंद किया यानी डार्क रूम, और उस पर ध्यान किया। वाह क्या दृश्य था, उसको प्रोसेसिंग किया, उसको ध्यायतो विषयान पुंसह संगस्तेषु उपजायते। फिर से और ज्यादा प्रोसेसिंग करके फिल्म बना के फ्रेम भी डाल के चिपका देना, संगात संजायते कामः। पर अगर एक ही तरीका है ये प्रोसेसिंग सारा तो हटाना है, तो वो प्रोसेसिंग करने से पहले नेगेटिव को उठा दो, कैमरा से बाहर निकालो, सूरज के सामने दिखा दो। हमारा एक गुरुकुल का लड़का एक बार ऐसे ही किया, सारा फोटो खींचने के बाद एक छोटे लड़के को दिया लास्ट फोटो खींचने के लिए, क्योंकि जो खींच रहा था वो बोला मेरा तो एक बार खींचना चाहिए कोई, तो एक छोटे बच्चे को दिया, उसने खींचा, खींच के वो बच्चा बड़ा बच्चा उधर चला गया, तो छोटे बच्चे ने क्या किया, देखना चाहता था मैंने ठीक खींचा कि नहीं, तो रील निकाल के सूरज में ऐसा लगा के देख रहा हूं सब अच्छा हुआ है कि नहीं, सर्वनाश। तो इस तरह से भले हमारी इंद्रियां बाहर दुनिया में गए हैं, कान बहुत सारी चीज सुन रहे हैं, जैसे बापूजी के तीन बंदर ये इसे सब बंद करके तो नहीं रह सकते, खुला रखना है, तो आंखों से बहुत सारे दृश्य गए बहुत, और हमारा हृदय तो अनगिनत रील है, इसके अंदर करोड़ों जन्मों का रील है, डेवलप हो रहा है, कुछ डेवलप करने बाकी है, ऐसा बड़ा गोडाउन है। पर कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, हर सुबह भगवान के सामने जाओ मंगल आरती में, आंख फाड़ फाड़ के देखो भगवान को, तो सूर्य की किरण अंदर जाएंगे और उस दिन का पिछले दिन का जो भी था वॉश आउट हो जाएगा। रात को सोने से पहले भगवान के सामने आंख फाड़ के देखो, सारा दिन भर का जो रील तुमने खींचा अनजाने में, तो पोस्टर देख लिया और आजकल की दुनिया में अनजाने में नहीं, जहां भी जाए अरे रेल का जो हैंडल है उसमें भी एडवर्टाइजमेंट, उसमें भी नंगी लड़की, कहीं छोड़ा नहीं है, जहां जहां व्यक्ति का आंख जा सकता है सब जगह उन्होंने चिपका के रखा है। क्या करोगे, बापूजी जैसा सब तो बंद करके नहीं रख सकते, पर कृष्ण सूर्य समा भगवान के सामने जाएंगे वॉश आउट हो जाता है कम से कम। तो यह तपस्या है, हर रोज भगवान की श्री विग्रह की का दर्शन और बड़ी तीव्रता पूर्वक, जितने प्रार्थना भाव से हम मंगल आरती करेंगे उतने मतलब एक्सपोज कर रहे सूरज को अपने हृदय में, वॉश आउट, और फिर प्रसाद का सेवन, इस तरह से पुराने करोड़ों जन्मों का पाप दूर, और अभी जो पाप एकत्रित हो रहा है वो भी वॉश आउट, तो शरीर शुद्ध हो गया। पर शरीर से ऊंचा है मन, मन की बीमारी क्या है, मन की बीमारी भी दो है, जहां नहीं चाहिए वहां जाता है और जहां चाहिए वहां लगता नहीं, मन की यही बीमारी है एक्चुअली, जहां नहीं चाहिए वहां जाना और जहां चाहिए वहां नहीं लगना। इसीलिए भगवान कहते हैं यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य इतत् आत्मन्येव शमनयेत्। और मन की सबसे बड़ी तपस्या है मन को जहां भी जाए वहां से खींचकर जहां चाहिए वहां लगाना, कहां, भगवान के चरण कमलों में, कैसे, नाम जप। नाम जप जब कर रहे हैं तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, जहां भी मन जाए वहां से उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करने की भी जरूरत नहीं, जहां चाहिए वहां लगा दो, जहां मन चाहिए लग गया तो जहां नहीं जाएगा वहां जाएगा ही नहीं। और ये ट्रेनिंग है, जिसने ये अभ्यास किया है जब भी मन इधर उधर जाता है उसको मालूम है कि भाग रहा है, उसको नियंत्रण करके ला सकता है। और ऐसा नियंत्रण अगर हर रोज जीवन भर करे तो मृत्यु के समय मन हजारों जगह जाएगी, पर क्योंकि हमें ट्रेनिंग मिला है जिस प्रकार भीष्म पितामह ने सब जगह से हटाकर भगवान के सुंदर स्वरूप में ध्यान दिया, क्यों, सर्वश्रेष्ठ योगी थे, क्योंकि वो जो भी कर रहे थे भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, और इसीलिए उस समय पर सबसे बड़ी जरूरत है मन को केंद्रित करना, उस समय वो, क्योंकि उनको उनको ट्रेनिंग था, अभ्यास था, अभ्यास से न तो कौतेय वैराग्य न गृह्यते। अर्जुन कहा चंचलम मन कृष्ण, बहुत मुश्किल है भगवान, भगवान ने कहा नहीं नहीं अभ्यास न तो कौतेय, अगर आज अभ्यास नहीं करेंगे, जैसे महाराज कुलशेखर कहते हैं, अब जब मेरा शरीर तंदुरुस्त है अब अगर मैं मन नहीं लगाऊं अभी मेरी मृत्यु हो जाए अच्छा है, क्योंकि प्राण प्रयाण सबये कफवा कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। तो ये बड़ी तपस्या है, नाम जो जब जो है बड़े ध्यान पूर्वक प्रार्थना भाव से निरपराध भाव से तीव्रता से करना। मनसस्तु पराबुद्धिर, मन से भी ऊंचा है बुद्धि। अब बुद्धि की भी अशुद्धता क्या है, बुद्धि की बीमारी क्या है, बुद्धि की बीमारी भी दो है, एक शंका करना, डाउटिंग, हां भगवान है किधर है, आत्मा किधर है, एक्चुअली शंका करना बुद्धि का लक्षण है, बुद्धिमान का लक्षण है, शंका करना, शंका करना चाहिए। अर्जुन ने बार बार प्रश्न पूछा, अर्जुन ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, परीक्षित महाराज ने बार बार प्रश्न पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न करता है, पर जरूरत से ज्यादा बुद्धि कब है? जब अधिकृत व्यक्ति से सुनने के बावजूद भी शंका करे, वो अति बुद्धि, भौतिक बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि, तब वो अशुद्ध बुद्धि है। अधिकृत व्यक्ति से सुनकर समाधान होने तक शंका करना चाहिए, पर एक बार शंका का समाधान हो गया तो फिर से शंका नहीं। फिर दूसरा बीमारी क्या है? दृढ़ता नहीं है। दृढ़ निश्चय बुद्धि का लक्षण है। मन को चप्पल से मारना और मन को झाड़ू से मारना 100-100 बार, सुबह उठ के चप्पल से, रात को सोने से पहले झाड़ू से मारना, चुप, इधर उधर नहीं भागने, जिधर बोला गया उतना करना। डाउटिंग एंड लैक ऑफ डिटर्मिनेशन इज द डिजीज ऑफ इंटेलिजेंस। हाउ टू ओवरकम, क्या इसको शुद्ध करने की तपस्या क्या है? शास्त्रों का नियमित रूप से अध्ययन। गीता में जब अर्जुन ने संपूर्ण गीता सुनने के बाद कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः। अब मैंने गीता सुना प्रभु आपसे, सारे संदेह मेरे दूर हो गए। करिष्ये वचनं तव, दृढ़ता पूर्वक आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक एक कुरुदन गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते दे करियो आज्ञा। आ ना कोरी हो मने, और मन में दूसरी आशा नहीं, बस उसको कैसे मैं परिपूर्ण करूं। नित्यम भागवत सेवया भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। संशय दूर हो जाता है। मैंने देखा है जो व्यक्ति नियमित रूप से भागवत सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनकी दृढ़ता और उनका जो शंका रहित होना, उनका श्रद्धा, श्रद्धा एक्सिलरेटर है और शंका जो है ब्रेक है। आध्यात्मिक जीवन की गाड़ी चला रहे, अब ब्रेक के ऊपर पैर रखे पूरा दबा के, कैसे जाओगे भाई आगे? डाउट है आपके अंदर, वहां से हटाओ और एक्सिलरेटर दबाओ। श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय, श्रद्धावान संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध अपराम शांति मचिरेणादि गच्छ। अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसको श्रद्धा नहीं है, जो पढ़ता नहीं है, सो सुनता नहीं है, पनश्यति, धीरे 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 दृढ़ता चली जाती है और शंका बढ़ जाता है। तो इसीलिए नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन। और चौथा, सबसे सूक्ष्म, सबसे कठिन और सबसे शक्तिशाली बुद्धि से भी ज्यादा, और वो है मिथ्या अहंकार। यही तो हमको बांध के रखा है। जिसने इसको खत्म कर दिया, समझ लो ऑलरेडी जीत लिए आप। अहंकार की बीमारी क्या है? अहंकार की बीमारी भी दो है। एक बीमारी क्या है? अपने आप को सब चीजों का केंद्र मानना। पूरी दुनिया घूम रही है मेरे कारण, हिरण्यकश्यप जैसे, मैं हूं पूरे दुनिया का केंद्र। अहंकार हमें वो केंद्रित करता है, अपनी ओर केंद्रित करता है। और भक्ति यानी कृष्ण को हमारे जीवन का केंद्र, हमारे परिवार का केंद्र, हमारे संसार, हमारे समाज का केंद्र, हमारे संसार का केंद्र, कृष्ण को केंद्र बनाना। अपने को केंद्र नहीं, कृष्ण को केंद्र, अपनी प्रसन्नता नहीं, अपनी इंद्रियों को तृप्ति नहीं। ऋषिकेश सेवनम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो काम वासना को प्रेम में परिवर्तित करना है तो कृष्ण की इंद्रियों को, कृष्ण को केंद्र करो। कृष्ण की प्रसन्नता क्या है? मेरी प्रसन्नता छोड़ो, मेरे इंद्रियों को क्या प्रसन्न करता है, मेरे मन को क्या प्रसन्न करता है, मेरे अहंकार को क्या प्रसन्न करता है, हमें उसको प्रसन्न नहीं करना है। कृष्ण को क्या प्रसन्न करता है, और उसके लिए मैं कुछ भी तपस्या करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न किया तो आपका जीवन सफल। सुनुष्ठित से धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। हमें हर क्षण देखना चाहिए, हर क्षण हम जो भी सोच रहे, जो भी कर रहे, जो भी कह रहे हैं, क्या कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं इससे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, कृष्ण की प्रसन्न कैसे होंगे नहीं, मैं नहीं मालूम शास्त्रों के द्वारा, पर गुरु को प्रसन्न करने से। तो ये एक तरीका होगा। दूसरी बीमारी क्या है, जो भी कार्य करे उसका जो श्रेय लेना, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम यदि मन्यते। ये सब हुआ है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए किसने किया। मैं तो एक साधन हूं, सूक्ष्म रूप से श्रेय लेने की जो है ये इच्छा करोड़ों करोड़ों जन्मों से चली आई है, और इसको त्यागना बहुत मुश्किल है। कम से कम जो किए उसका श्रेय लो, जो नहीं किए उसका भी अब लेते आए हैं, और उसको त्याग देना। जो भी श्रेय है कृष्ण को देना, उन्हीं की कन्विंस हो जाना, उनकी कृपा के बिना नहीं होगा, उनकी कृपा है बस। ये कैसे हो महाराज, बहुत सरल, भक्तों के संग से होता है। जब भक्तों के संग में आते हैं तो क्या होता है, असली भक्त का संग का मतलब क्या, मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। मत चित्ता, जब मेरे भक्त साथ आते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन को, मत चित्ता, उनका चित्त हमेशा मेरे में होता है, मेरे को केंद्र रख के बातचीत करते हो। मदगत प्राण, उनका संपूर्ण प्राण मेरे लिए है। बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को मेरा स्मरण कराते हैं, मेरे नाम गुण लीला इत्यादि का स्मरण कराते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, हमेशा मुझे केंद्र रखकर मेरी मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं। द मिशन ऑफ गुरु एंड कृष्णा इज द सेल्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हाउ टू एक्सपैंड द मिशन ऑफ गुरु एंड कृष्णा, तुष्यंति च रमंति च। देखिए बहुत, दो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, तुष्यंति च सैटिस्फैक्शन एंड रमंति च एंजॉयमेंट। अपने को केंद्र रखने में हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है और अपना गुणगान करने में आनंद मिलता है। तुष्यंति च रमंति च, हमारी तुष्टि अपने को केंद्र रखने में और हमारा आनंद श्रेयस श्रेय लेने में। पर भक्त का संतुष्टि है कृष्ण का नाम फैले। प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय, पूरे अंतरराष्ट्र में प्रचार किए, उनका नाम कहीं नहीं डाला। तो संस्था का नाम, कई ऐसी मायावादी संस्थाएं हैं जो संस्थाएं संस्थापक आचार्य के नाम से जाने जाते हैं, ये मिशन वो संस्था वो मिशन। अरे भगवान कौन वो नहीं मालूम, ये आदमी मैं शुरू किया हूं, मेरा मिशन है ये। पर प्रभुपाद जी ने कृष्ण का नाम पूरे विश्व में फैला दिया। ये हरे राम हरे कृष्ण है ना, तुम हरे रामा हरे ना, कोई मजाक भी करता है तो हरे रामा हरे कृष्ण, कृष्ण का नाम को फैला दिया उन्होंने, अपने को पीछे रखे। तो कृष्ण को केंद्र रखने में संतुष्टि और कृष्ण को श्रेय देने में आनंद। तुष्यंति च रमंति च, और इतने संतुष्ट रहते हैं, इतने आनंद रहते हैं, उनको दूसरे संतुष्टि की और आनंद की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया चल रही है वो अहंकार के लिए। तो इस तरह से ये हमारे लिए तपस्या है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा सबसे बड़ी तपस्या क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, हरिनाम संकीर्तन करना। पर उसके लिए त्रिणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। अगर कीर्तनीय सदाहरि करना है तो ये चार चीज, और चारों जो है अहंकार के ऊपर निर्भर है। तृणादपि सुनिश्चित, अपने आप को नम्र समझना, तरोरी व सहिष्णुता, जो भी अपमान करे उसको सहित करना, अमानिना मान देन। तो इस तरह से ये हमारे लिए तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। और आप कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको मधुबन जाके ध्रुव टीला में खड़े होने की जरूरत नहीं, कपित फल खाने की जरूरत नहीं, सांस बंद करने की जरूरत नहीं, पानी पीने की, सिर्फ पानी पीने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे कि कैसे याद रखे प्रभु जी क्या क्या है, कोई चिंता नहीं, ये चार शब्द याद रखिए, जाने के बाद कहेंगे, कभी कभी होता है जाने के बाद कहते हैं क्या हुआ आज प्रवचन, बहुत अच्छा हुआ, क्या आप बोलो, कुछ याद नहीं है बट अच्छा था प्रवचन। ऐसा नहीं होना। तो इसीलिए ध्रुव महाराज की तपस्या का हमारे जीवन में परिवर्तन क्या होना चाहिए, ये चार अक्षर याद रखिए, ए बी सी डी। ए यानी एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संघ, जिससे अहंकार शुद्ध हो जाता है, मिथ्या अहंकार, मत चित्ता मत गत प्राणा, कृष्ण को केंद्र। कम से कम जब हम एक दूसरे के सामने आते हैं और कोई कहता है कि प्रभु जी आपने की इच्छा ले 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 कृष्ण की कृपा, कम से कम कहते तो हैं, भले उसको माने या नहीं माने, कम से कम कहते तो हैं। तो एसोसिएशन ऑफ भक्तों के संग से कृष्ण को केंद्र में लाना और यश कृष्ण को देने की जो एक तरीका है, वो धीरे धीरे हमारा आदत बनने लगता है, और एक न एक दिन वो आदत करते करते बोलते बोलते शायद हृदय में उतरेगा। बी यानी बुक्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान के पुस्तक गीता और भागवत, जिससे संशय दूर हो जाता है और दृढ़ता बढ़ जाती है। क्योंकि पुस्तक में क्या पढ़ते हैं हम, ध्रुव महाराज जैसे, प्रहलाद महाराज जैसे, क्या दृढ़ता, हिरण्यकशिपु में कितना प्रलोभन था, जय हिरण्यकशिपु कहते तो उनका पूरा ब्रह्मांड का राज्य उनको मिल सकता था, सिर्फ उनको कहना था जय हिरण्य, ओम हिरण्याय नमः, पर वो कहते नहीं, ओम नारायणाय नमः। कितनी सारी समस्याएं हरिदास ठाकुर के जीवन में, कितनी सारी समस्याएं, पर क्या दृढ़ता, खंड खंड होए देह जाय यदि प्राण, तबु आमय बदन न छाड़े हरिदास, भले शरीर को टुकड़े टुकड़े कर हरेक टुकड़े से हरे कृष्ण महामंत्र निकलेगा, मुझे तुम रोक नहीं सकते, भले मेरे शरीर जीवा काट डालो पर तुम मेरे को महामंत्र लेने से रोक नहीं सकते। प्रभुपाद जी का दृढ़ता देखिए, 40 रुपया कुछ मदद नहीं, कहां जा रहे नहीं मालूम, दो हार्ट अटैक, गरीबी, दृढ़ता, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही हकुनंदन, ये बुद्धि का शुद्धता, शुद्ध बुद्धि का लक्षण है। बहुशाखाय अनंताश बुद्ध यो अव्यवसाय भोग ऐश्वर्य प्रसक्पाना। तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है बाय रीडिंग बुक्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, शास्त्रों का अध्ययन। सी चैंटिंग ऑफ द होली नेम, नाम जप, जिससे मन इधर उधर जाने की जो प्रवृत्ति है वहां से हटाकर भगवान के चरणों में करे, और उसके लिए ये जप जो है ध्यान पूर्वक और निस्सहाय भाव से और निरपराध होकर लेने की प्रयास से। और डी यानी डाइट ऑफ कृष्ण प्रसाद एंड डीटी वर्शिप, कृष्ण का प्रसाद और श्री विग्रह की सेवा। ऑफकोर्स श्री विग्रह की सेवा तभी तो प्रसाद मिलेगा आपको, श्री विग्रह की जरूरत नहीं, विग्रह नहीं है तो कम से कम फोटो रखवा, क्योंकि भगवान अपने चित्र से अभिन्न है। आठ प्रकार के जो विग्रह बताई गई है जिनकी सेवा की जा सकती है, उनमें से एक है पेंटिंग, चित्र। तो इस तरह से